आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से, और आज हम बात कर रहे हैं पेरेंट वीजा के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पेरेंट वीजा श्रेणी के लिए सालाना केवल 8,500 स्थायी स्थान उपलब्ध करे हैं, और वर्तमान में 1.5 लाख से भी अधिक आवेदन पेरेंट वीजा को पाने के लिए इस वीजा की क्यू में हैं। सरकार का कहना है कि जैसे जैसे आवेदनों की ये क्यू बढ़ने लगती है, वैसे वैसे इस वीजा को प्रोसेस करने का समय यानी इसका प्रसंस्करण समय भी बढ़ जाता है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन एजेंट वैभव पटेल से। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी। तो सबसे पहले हमें बताएं, पेरेंट वीजा कैटेगरी में किस प्रकार की स्थिति है, अभी कितनी एप्लीकेशंस क्यू में हैं, प्रोसेसिंग टाइम पेरेंट वीजा कैटेगरी में क्या चल रहा है, क्या बता सकते हैं आप हमें?
श्योर। तो पेरेंट वीजा एक है ना, कैप्ड एंड क्यूड वीजा है, मतलब कि हर साल गवर्नमेंट एक सेट नंबर ऑफ वीजा ग्रांट करेगी और बाकी लोगों को क्यू में डाल देंगे, और वो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है उनके एप्लीकेशन के डेट के हिसाब से, मतलब इन ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन
जी।
तो अभी के हिसाब से 150,000 से ज्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी क्यू में है, और अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 8,500 एलोकेशन था, मतलब कि पूरे साल में 8,500 एप्लीकेशन ही प्रोसेस होगी। और इस साल भी जो 2024-25 के प्लानिंग लेवल में भी उन्होंने सेम नंबर रखा हुआ है। तो हर साल क्या होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो लॉन्च होती है वो उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो फाइनलाइज होती है एलोकेशन के हिसाब से वो बहुत कम है
जी।
तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 15,000-20,000 एप्लीकेशन लॉन्च हुई, लेकिन प्रोसेस तो 5,000 या 8,000 ही हुई जो साल, जिस साल में जो एलोकेशन था उसके हिसाब से
जी।
तो अभी जो सारा बैकलॉग होते होते 1,50,000 एप्लीकेशन तक पहुंच गया है। अगर आप देखें, मैंने आई थिंक आई वॉज वर्किंग इन 2012 ऑन एन एप्लीकेशन, तब पेरेंट वीजा नॉन कंट्रीब्यूटरी ऑफशोर से 2 से 3 साल लगते थे आई थिंक रफली, मुझे याद है, थोड़ा कच्चा याद है, 2-4 साल लगे होंगे।
अच्छा,
अभी उस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का आज के हिसाब से अगर प्रोसेसिंग टाइम देखो तो 31 ईयर है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा का
जी।
और कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा का जो मैंने पहला केस किया था उसको 2-3 साल लगे थे आई थिंक, है ना, 2016-17 में डाला था, 2021 में ग्रांट हो गया था, तो 3 साल के आसपास था। वो आज बढ़कर 14 ईयर्स तक हो चुका है, मतलब कि एप्लीकेशन लॉन्च करने के बावजूद आपको 14 साल एप्लीकेशन मतलब वेट करना पड़ेगा, और इसमें आप पे भी कर रहे हो 43,600 पर पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू द गवर्नमेंट
जी। जी, तो जो कंट्रीब्यूटरी वीजा है वो ज्यादा महंगा वीजा है, जिसमें आप 40,000 से ऊपर वीजा फी देते हो, और जो दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो 5,000 के करीब है,
जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन फीस पे करनी है
जी।
दूसरे वीजा में आपको कंट्रीब्यूशन भी देना है और प्लस अश्योरेंस ऑफ सपोर्ट भी देना है।
अच्छा,
तो इसमें पेरेंट वीजा में 2 कैटेगरीज है, एक है जनरल पेरेंट वीजा जिसमें अगर किसी की एज, पेरेंट्स की एज अगर कम 67 से कम है, 67 ईयर्स ओल्ड से, ठीक, तो आप नॉर्मल पेरेंट वीजा में जाओगे
जी।
जो 100 की सीरीज आती है, 100 फॉर एग्जांपल 103, 143, 173, और जो एज पेरेंट वीजा है जिनकी एज 67 से ज्यादा हो चुकी है मोस्ट लाइकली वो लोग जाएंगे 800 सीरीज में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑनशोर आके 800 सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। 800 सीरीज का फायदा ये कि ये ऑनशोर लॉज होता है, इसमें ब्रिजिंग वीजा भी मिलता है, जबकि 100 सीरीज का प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई भी ब्रिजिंग वीजा नहीं मिलता क्योंकि ये ऑफशोर एप्लीकेशन है।
अच्छा वैभव जी, जो आपके क्लाइंट्स हैं जो पेरेंट वीजा एप्लीकेशन डाल चुके हैं, उनमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है आपको? क्या कह रहे हैं वो कि प्रोसेसिंग टाइम देखकर कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी डिसअपॉइंटमेंट उनको उनमें नजर आती है?
ऑब्वियसली पहली तो चीज है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है उनको भी, क्योंकि उनको देखिए हर बंदा 43,600 पर पेरेंट कंट्रीब्यूट करने के लिए कैपेबल नहीं होता है।
जी
राइट, क्योंकि उनके खुद के दो बच्चे, नॉर्मल एवरेज फैमिली देखो आप, तो जो
जी
भारतीय मूल के लोग हैं उनका क्या होता है, हस्बैंड वाइफ है, एवरेज दो बच्चे होते हैं, और अभी उनका जो इनकम भी है फैमिली इनकम लेट्स से 1.5 लाख के आसपास होता है, अगर गुड अर्निंग फैमिली में है तो शायद 2 लाख के आसपास होगा
जी
राइट, एवरेज की बात करें, नॉट यू नो बिजनेस पीपल है तो उनका शायद इनकम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये एवरेज फैमिली है, तो इनके लिए उनके बच्चों का एक्सपेंसेस, उनका घर का एक्सपेंसेस वो सारा निकाल के ये पैसा सेव करना बड़ी बात हो जाती है, और ये पैसा देने के बावजूद, रेडी होने के बावजूद भी उनके लिए वेटिंग पीरियड 14 ईयर्स है अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो, और अगर
जी
नॉन कंट्रीब्यूटरी में जा रहे हो तो उसमें 30 ईयर्स का तो प्रोसेसिंग टाइम है,
जी
अगर लेट्स से आपके पेरेंट्स की एज 67 से कम है, मतलब आप 100 सीरीज में अप्लाई कर रहे हो जैसे 103, 143,
जी
173, तो उसमें तो क्लाइंट यही बोलते हैं कि ये अप्लाई करने का भी पॉइंट ही क्या बना, क्योंकि अगर मिनिमम कंट्रीब्यूटरी में जाते हैं तो भी 14 साल लगेंगे,
जी
और ये आज का है राइट, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि एलोकेशन बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन
जी
नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ रही है ना अंदर,
तो क्या कई लोग अपने पेरेंट वीजा को अप्लाई करने का प्लान भी छोड़ देते हैं?
हाँ जी, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर या तो वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं
जी
या तो फिर वो वेट करते हैं उनके पेरेंट्स को 67 ईयर्स टर्न होने में, तो फिर उनके पेरेंट्स ऑन शोर विजिटर वीजा पे आके फिर 800 सीरीज में जैसे एज पेरेंट नॉन कंट्रीब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरी जो भी डालना है उनको डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन वो लोग फिर वो चूज कर लेते हैं, क्योंकि उस पर उनको ब्रिजिंग वीजा मिल जाता है पेरेंट्स का, पर वहां पे भी उनका ये कंसर्न तो रहता है क्योंकि उनको प्राइवेट इंश्योरेंस तो फिर भी बाय करना है क्योंकि पेरेंट्स एज है तो उनको
जी
ऑब्वियसली हॉस्पिटल कवर और सब तो चाहिए राइट।
जी
बाकी लोग क्या करते हैं कि एक और वीजा है कॉल्ड 870
जी
जो आप ले सकते हो, जो वीजा में आपके पेरेंट्स यहाँ पे 3 साल या 5 साल का वीजा ले सकते हैं, अनलाइक सिमिलर टू विजिटर वीजा है पर इसमें आप काम नहीं कर सकते हो, इंश्योरेंस चाहिए, पर इसमें आप 3 साल का वीजा चाहिए स्ट्रेट रह सकते हैं, पर आपको $5,000 पर पेरेंट देना पड़ेगा, और अगर 5 साल का वीजा चाहिए तो 10,000 पर पेरेंट देना पड़ेगा, तो ये भी एक एक्सपेंसिव वीजा है।
तो क्या पेरेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कवर्ड होते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस लेनी ही पड़ती है उनके लिए?
870 में भी नहीं हो, और ब्रिजिंग वीजा जो है जैसे 804 या 864 या 884 के लिए जो ब्रिजिंग वीजा मिलता है उसमें भी मेडिकेयर कार्ड नहीं मिलता है, तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस जब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है
जी
तब तक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन 800 सीरीज फिर भी बेहतर है लोगों के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को जो आपका मेन इंटेंशन होता है पहला कि मेरे पेरेंट्स हमारे साथ रहे
जी
तो वो है, पर आप देखेंगे तो कंपेयर करें आप दूसरी कंट्रीज के साथ तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का पेरेंट वीजा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वेलकमिंग नहीं है।
तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार पेरेंट वीजा कैटेगरी को और आसान बनाने के लिए कोई नया प्लान लागू कर सकती है, कोई नए रूल्स लागू कर सकती है?
मुझे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि अगर कुछ होता यस आप देखो तो ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा अलोकेशन बढ़ा है
जी
बट सिग्निफिकेंट राइज नहीं है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि माइग्रेशन प्लानिंग में पहले पार्टनर वीजा का अलोकेशन बहुत कम होता था, आई थिंक आज जो है उससे कम होता था,
जी
लेकिन आज की तारीख पे उसका 40,500 अलोकेशन है पार्टनर वीजा का,
अच्छा जी
तो उस हिसाब से उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ा गया है लेकिन इसको नहीं बढ़ाया गया है पेरेंट वीजा
तो
को।
कहीं लग रहा है कि पेरेंट वीजा की प्रायोरिटी सरकार के लिए बहुत कम है।
हाँ, क्योंकि ये तो देखिए पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है कि ऐसा ही चलता है कि जब वो मुद्दा उठाया जाएगा, जितने ज्यादा लोग मुद्दा उठाएंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी, तो आई थिंक अगर हमारे मूल के लोग या जो भी लोग मतलब सारी कम्युनिटी जो माइग्रेंट कम्युनिटी है और उनको अपने
जी
पेरेंट्स को लेके आना है तो साथ में मिलकर आवाज रेज करेंगे तो गवर्नमेंट के अटेंशन में आएगा, गवर्नमेंट डेफिनेटली उस पर देखेगी।
हमारे साथ आज जुड़ने के लिए वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे SBS रेडियो पे इनविटेशन देने के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।